श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदान Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radhe Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra
Yeah.
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोच्छत श्री श्रीमती श्रीवन कृषि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इसकॉन संस्थपकाचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुवासादि श्री गौर भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपागतामयं ददापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलम् श्रीगुरुण वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान पूरे भगवद गीता के सार के रूप में उस 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते मई एवं मना आदत्वा मई बुद्धि निवेशया निवेश्यसि में अथ ऊर्ध्वम न संशया। जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि को पूरी तरह भगवान में निवास पूरी तरह उसमें आवेश कर लेते हैं वैसे व्यक्ति बिना कोई संशय बिना कोई डाउट वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो कोई कह सकता है कि मेरा मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र नहीं होता, तब भगवान उसके बाद वाले श्लोक में बताते हैं अत चित्त समाधा तुम न सकनोसी मैं स्थिरम अभ्यास योगे न तत्थो माम इच्छा तुम धनंजया। अगर तुम्हारा चित्त पूरी तरह मुझ पर आवेश नहीं हो रहा है तो हे धनंजय तुम अभ्यास करो। तो ये अभ्यास जो है इसी अभ्यास में जो व्यक्ति लगता है उसको कहते हैं साधना या साधक भक्त। तो इसी साधक भक्त के विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु जो कि श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित किया गया यह ऐसा ग्रंथ है जो एक साधक भक्त के लिए बहुत बलशाली ग्रंथ है। तो इसमें कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है कि जो एक साधक भक्त को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है, तब जाकर वो भाव भक्ति के बाद, वो रागानुगा भक्ति के बाद, वो प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है। तो भक्ति के तीन स्टेज हैं, एक है साधना, साधक यानी कि दूसरे शब्द में कहते हैं वैदि भक्त, वैदि भक्ति, उसके पश्चात भाव भक्ति, और भाव भक्ति के पश्चात प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति जो है ये उच्च स्तर का गुण है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भक्ति को धक्का देने की आवश्यकता पड़ती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मानो कि गाड़ी बहुत दिन से बंद पड़ा है, तो उस गाड़ी को अगर चालू कर रहे तो गाड़ी मोटर मोटर जो है पेट्रोल को पकड़ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं उसी गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है। तो जब धक्का मारते मारते ऐसा समय आता है कि वही मोटर का गाड़ी उसी पेट्रोल को खींचता है और गाड़ी शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारी भी वही अवस्था है कि हम भी भक्ति में क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो किस लिए? ताकि स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम जागे। अभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। अगर वास्तविक भगवान के प्रति प्रेम होता तो केवल एक नाम लेने मात्र से हमारे आंखों से अश्रु धारा बहती थी। मगर प्रेम पूर्वक आंसू तो नहीं गिरता, मगर आंसू गिरता है जब रात के 10 बजे तक माला और बाकी है, तो वो माला को देख के आंसू जरूर गिरता है और राउंड बाकी है, आज का कोटा पूरा हुआ नहीं, तो ये सोच के आंसू जरूर गिरता है। लेकिन वास्तविकता श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों में अश्रु धारा इस प्रकार बहते थे, केवल भगवान का नाम लेते लेते वो रुक जाते थे, जगह 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 करके रुक जाते थे। तो इस प्रकार जो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति के स्तर पर जो हमारे गुणों को प्रकट करना है, तो हमें पहले बाहरी स्तर से इसे थोपना पड़ेगा। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए, एक तरह से जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करता, जब तक उसे उसके लिए वही शुद्ध भक्ति का एक प्रकार से उसे ड्रामा करना पड़ेगा। तब उसे उस भक्ति के ड्रामा के द्वारा वो शुद्ध भक्ति को प्रकाशित कर सकता है। हालांकि है ड्रामा, लेकिन है बलशाली ड्रामा। कोई अगर इस भक्ति का अगर केवल नकल भी करता है, तो इस भक्ति के विधि विधान में ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पूर्ण तरीके से समर्पण हो जाता है। ये भगवान की भक्ति का शक्ति है। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जहां पर वर्णन किया गया है कि कुछ ऐसे गुणों को हमें बाय फोर्स नहीं है तो भी अपनाना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में जो प्रसंग आता है, ये प्रसंग वास्तविक साधक भक्तों के लिए बहुत सीखनीय लायक ग्रंथ है कि कैसे हम अपने जीवन में ऐसे उपदेशों को उतारे, कैसे हम अपने जीवन के आचरण को बिताए जिसके द्वारा हमारी भक्ति में प्रगति प्राप्त हो और हम भक्ति में और उन्नत हो। एक छोटा सा एक दृष्टांत इस प्रकार है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा के लिए जब प्रस्थान कर रहे तब उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं आप अकेले मत जाइए, आप किसी को साथ में लेकर जाइए, क्योंकि उनको पहले से एक अनुभव हो गया था काल कृष्णदास का। बोला नहीं नहीं मैं अकेले जाऊंगा। बोले नहीं नहीं किसी को लेकर जाइए। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त है जिसको तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो और इस भक्त के गुणों के विषय में चर्चा करने गए। तो क्या कहते हैं स्वरूप को है यही बोल बल्ल भट्टाचार्य तुम्हारे सुष्णित बड़ पंडित साधार्य। तो कहने लगे कि इस भक्त के अंदर चार विशेष गुण हैं। तो क्या कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी कि इनके अंदर चार क्या क्या गुण हैं? तो कहते हैं सुष्णित पहला। तो एक शिष्य को जब वो साधक भक्त जो होता है तो उसके अंदर पहले इस गुण को उसे लागू करना चाहिए और वो है गुरु के प्रति प्रेम, सुष्णित। ये कुछ भी कार्य करेगा, जो आप कहोगे जो आदेश दोगे ये करने को तैयार है। और दूसरा सुष्णित पंडित, दूसरा जो गुण है एक शिष्य के अंदर जो होना चाहिए वो पंडित यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए। शिष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, अगर मूर्ख शिष्य होगा तो गुरु को उसका भार धोना पड़ेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जब टहलते हुए मॉर्निंग वॉक में जब निकले थे तब उस समय श्रील प्रभुपाद कहने लगे कि यह हॉल बहुत बढ़िया है, यह हॉल हरे कृष्ण मंदिर के लिए होना चाहिए तब बढ़िया होगा। तो सब कहने लगे यस प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो कुछ और आगे गए तो वहां पर एक पार्क था, तो प्रभु कहने लगे ये पार्क हरे कृष्ण इस्कॉन के लिए होना चाहिए तो बहुत बढ़िया होगा। तो सब कहने लगे यस प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो सारे शिष्य उनके पीछे ही थे। तब वो और आगे गए तो प्रभुपाद कहने लगे ये कुत्ता जो दिख रहा है इतना बड़ा कुत्ता, काफी बड़ा कुत्ता था, बोला ये इस्कॉन के लिए होना चाहिए। तो सब कहने लगा यस प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद घूम के देखे कुत्ते की क्या आवश्यकता है, तो सब हैरान हो गए, अरे प्रभुपाद तो गंभीर हो गए। तो प्रभुपाद कहने लगे जब मैं कुछ कहता हूं तो बिना सोच समझ के यस प्रभुपाद जय प्रभुपाद नहीं बोलना है, थोड़ा सोचो समझो फिर बाद में आगे कदम बढ़ाओ। तो इस प्रकार एक शिष्य को बिना भावुकता पूर्वक कार्य करना है, बुद्धि पूर्वक। एक गुरुजी थे, अपने तीन शिष्य को उन्होंने आदेश दिया कि जो भी कुछ खाना सात्विक आहार खाना। ऐसे आदेश देकर उनके गुरुजी चले गए ध्यान मगन में। तो अब 6 दिन के बाद गुरुजी आए, तो सारे जितने भी तीन शिष्य थे उनके, उन्होंने सुना कि गुरुजी ने आदेश दिया है जो खाना है सात्विक आहार खाना है। तो एक शिष्य ने कहा कौन सा आहार खाए, तो तीसरा शिष्य ने कहा मैंने सुना है कि गाय बड़ी सात्विक है, तो क्या करें, चलो गाय को ही खाते हैं। तो दूसरे दिन से उन लोग गाय खाना शुरू कर दिया। जब गुरुजी आए 6 दिन ध्यान के बाद, तो गुरुजी ने पूछा अपने शिष्य को तो मेरे दिए हुए आदेश के अनुसार आप लोग कार्य कर रहे हैं, बोले हाँ हाँ गुरु जी, आप जैसे बोल रहे वैसे कर रहे। आपने कहा सात्विक आहार खाने, हम सात्विक आहार खा रहे। तो क्या खा रहे? हम गाय को रोज खाट के खा रहे। अरे मूर्ख, मैंने गाय को खाने बोला, अरे सात्विक आहार खाने बोला। ऐसे कहकर फिर गुरु जी चले गए ध्यान में। फिर तीनों लोग हैरान हो गए, अरे सात्विक। फिर गुरु जी के तरफ देखे, इससे बढ़कर सात्विक और कौन हो सकता है। फिर गुरुजी का ही दब्बर लग गया। तो अगर शिष्य अगर ऐसे हुआ तो फिर गुरु को पड़ेगा। तो शिष्य बड़े पंडित होने चाहिए, जरा बुद्धिमान होना चाहिए, पंडित साधु, और साथ में ऐसा होना चाहिए कि वो जब सेवा करे तो दूसरे को तकलीफ ना दे, दूसरे को परेशान ना करे। और चौथा है आर्य, भक्ति में उन्नत होने की आकांक्षा रखनी चाहिए। इस प्रकार के चार गुण एक शिष्य के अंदर होने से वो स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में भक्ति को लागू कर सकता है। तो वही भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि कौन से जो नौ गुण हैं जो कि हमें बाय फोर्स इसे लगाने की आवश्यकता है। अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब कोई यह नहीं कहेगा कि मैं क्या करूं, मेरे में नहीं है। अगर ऐसे कहेंगे तो नहीं चलेगा। तो एक साधक भक्त के लिए ये नौ प्रकार के जो गुण हैं वो नहीं है तो भी उसे आर्टिफिशियली कृत्रिम स्थिति से इसे लागू करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बताते हैं, पहला जो गुण है वो है शांतिर, यानी कि सहनशीलता। एक भक्त को सहनशील होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज को जब श्राप मिल गया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जबकि परीक्षित महाराज के पास पूरी शक्ति थी कि उस श्राप के उलट वो उस श्राप को नष्ट कर उनको भी दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर सहन किया। तो ये भक्तों के अंदर दिव्य गुण दिखाई पड़ता है, सहनशीलता। क्योंकि आज के तारीख में जैसे कलयुग के प्रभाव के कारण ये सहनशीलता नामक जो गुण है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, और इसीलिए कलयुग जो है डाइवोर्स युग बन गया है। छोटी छोटी बात के लिए देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़ा हो जाता है कि बस अंततगत वह उनका निष्कर्ष कहां पर आता है, कोर्ट में, और वो है तलाक। एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास पति पत्नी गए और कहने लगे कि प्रभुपाद, हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। तो पति पत्नी के बारे में कह रहे थे, पत्नी पति के बारे में कह रहे थे। तो प्रभुपाद कहने लगे, ऐसे करो कि आप अपने घर पर एक बड़ा नरसिंह भगवान का फोटो लगा दीजिए। तो बोला अच्छा, फिर गुस्सा कभी नहीं आएगा? बोला नहीं, फिर भी गुस्सा आएगा, लेकिन जब नरसिंह भगवान के विग्रह को देखोगे, उनके स्वरूप को देखोगे, तो उनका क्रोध देखकर आपको ऐसे लगेगा कि मेरा क्रोध उसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसी में ठंडा हो जाएगा। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति गया और वो कहने लगा कि पंडित जी, आप जरा मुझे कुछ बताइए, कुछ ऐसा चमत्कारी भस्म दे दीजिए, क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में खूब झगड़ा होता है। वो 2 शब्द बोलती है, मैं 4 बोलता हूं, वो 10 बोलती है, ऐसे होते होते हाथ पैर चलना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ करिए, हम अपने घर गृहस्थी झमेले में बहुत परेशान है। तो साधु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक भस्म देता हूं। और इस भस्म को क्या करना, जब भी तुम्हारी पत्नी दो शब्द बोली उसी समय इस भस्म को पानी में घोलकर मुंह में रख देना। बोला ठीक है। तो उसने वैसे ही किया। एक हफ्ते के बाद आया तो सीधे चरणों पे गिर गया। अरे पंडित जी, आपका तो भस्म कमाल का भस्म है, ऐसा चमत्कारी भस्म है कि हमारे घर में झगड़ा ही कला ही बंद हो गया। तो साधु ने कहा, अच्छा बताओ कि तुम मेरे आदेश का पालन कर। हाँ, आप जैसे बोलते हैं वैसे ही करता हूं। तो इन्होंने कहा कि ये चमत्कार ये भस्म का नहीं है, तुम्हारे न बोलने का चमत्कार है। क्योंकि जब भी गुस्सा तुम्हारी पत्नी को आता है तो तुम क्या करते हो, उसे पानी में घोलकर मुंह में रखते हो, और वो मुंह में पानी में वो भस्म मुंह के अंदर रखने के कारण वो तो कुछ बोल नहीं सकता है। पत्नी बोलते बोलते खुद तंग आती है, अरे कुछ बोल नहीं रहा तो छोड़ो, वो चली जाती है तो ये भी इसका भी गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो चमत्कार वो भस्म का नहीं है, चमत्कार यह है कि ना बोले। तो जब सहनशीलता नामक गुण जब हमारे जीवन में नहीं है तो उसे पहले ये कदम को उठाना है कि वो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति में जब वो आता है तो वो अपने मुंह को बंद कर दे। तो उनके अंदर सहनशीलता नामक गुण धीरे धीरे प्रवेश करेगी। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं ताम स्थितिक शश्व भारत, दूसरी अध्याय के 14वें श्लोक में ये जो श्लोक एक साधक भक्त के लिए है कि सुख दुख में हमेशा व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, तब उसके जीवन में भक्ति का एक माहौल को वो बना सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा कि स्वामी जी, प्रभुपाद, मैं इस भक्त से बड़ा परेशान हूं, मैं इसको सह नहीं सकता हूं, ये सहा नहीं जाता है व्यक्ति, मैं क्या करूं। प्रभुपाद कहने लगे, जैसे मैं तुम्हें सह रहा हूं वैसा तुम उसको सहो। तो जब कोई ये कहता है कि मैं इसे सह नहीं सकता हूं, ये बड़ा नटखट है, तो ये भी सोचना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति भी मुझे सह रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को है, तो उसी कारण से इस्कॉन टिका हुआ है। एक बार एक व्यक्ति आया कंप्लेन करने के लिए, प्रभुपाद ये व्यक्ति भक्त नहीं है। प्रभुपाद पहले रुके, रुको रुको रुको, पहले ये बताओ कि मेरे अलावा इस्कॉन में और भक्त है कौन। तो चुप हो गया। तो वास्तविक में देखा जाता है मंदिर जो है एक अस्पताल है, और इस अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मरीज आते हैं। तो अस्पताल में कौन आएंगे? ऐसे मरीज आएंगे जो खांसता हुआ मरीज होगा, या कोई सर दर्द वाला मरीज होगा, कोई ऐसे भी मरीज होगे कि जो दर्द में चिल्लाता हुआ आता हो, तो अनेक अनेक प्रकार के मरीज आएंगे। तो एक बेड में व्यक्ति सोया है, उसके बगल में दूसरा एक पेशेंट सोया, वो खांस रहा है रात भर, तो ये तो नहीं कह सकता चुप रहो या इसको अस्पताल से निकाल दो, नहीं, तो उसे सहना पड़ेगा। इसी प्रकार इस आध्यात्मिक अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं, ये सारे मरीज अलग अलग बीमारियों के साथ आते हैं। तो जब एक व्यक्ति का बीमारी देखकर दूसरा पेशेंट उसको सह नहीं सकता तो उसकी गलती है। तो यहां पर यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि यहां पर सभी लोग बिना डिजीज के रहेंगे, सबके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी है। वैसे समझते हुए उसे पहला जो गुण है वह है सहन करना, सहनशीलता उसे लागू करना थी। दूसरा है अव्यक्त कालत्वम। ये अव्यक्त कालत्वम यानी कि एक साधक भक्त को अपने समय को पूरी तरह भगवान के भक्ति में लगाए रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब मेरे घर पर कुछ परेशानी आएगी तब मैं जाऊंगा संडे के सत्संग में, तभी जब तक परेशानी नहीं आ रही है तो मैं क्यों जाऊं। जैसे वो कहते हैं ना स्पैरल टायर, एक ऐसा गाड़ी का, एक गाड़ी जब पंचर होता है तो एक दूसरा टायर लगाया जाता है। तो वो टायर कब यूज किया जाता है, जब ये टायर पंचर हो गया तो वो दूसरे टायर को यूज किया जाता है। तो ऐसे ये भक्ति ये स्पैरल टायर के समान नहीं है कि जब मेरे जीवन की गाड़ी की चक्का जब पंचर होगा तब मैं आऊंगा, नहीं। उसे सदैव भगवान के भजन क्रियाओं में लगे रहना चाहिए निरंतर। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा वैसे वैसे उनका समय अपने आप कम होता जाएगा। ये एक मापदंड है कि मेरी भक्ति बढ़ रही है क्या नहीं, ये अगर परखना है तो एक मापदंड है कि आप देखिए कि दिन भर आप कितने फ्री टाइम में बैठे रहते हो। जितना आपका समय फ्री है उतना आपकी भक्ति पीछे है। तो यह जरूरी है कि कैसे वो निरंतर भगवान के भजन क्रियाओं में लगे रहे। तीसरा है विरक्तिर। विरक्तिर यानी कि उसे भक्ति करते हुए कुछ कुछ नियमों का पालन भी करते जाना चाहिए। जैसे दवाई तो ले रहे लेकिन दवाई लेने के साथ में कुछ नहीं भी करना है, परहेज भी है, यम और फिर नियम। तो अगर केवल यम में ही लगे रहे नियम नहीं करे तो फिर वो दवाई का असर नहीं पड़ेगा। जैसे एक डायबिटीज व्यक्ति वो गया डॉक्टर के पास, दवाई लिया, दवाई लेकर क्रोध दवाई समय समय पे खाया और बाद में हफ्ते भर के बाद चेकअप के लिए आया तो पता लगा कि डायबिटीज कम नहीं हुआ बढ़ गया। तो डॉक्टर ने पूछा ये क्या तुम्हारा तो डायबिटीज बढ़ गया है, तुम दवाई टाइम पे नहीं लेते थे? एकदम समय पर लेता था, रोज एक टैबलेट खाने के बाद मैं दो रसगुल्ला खाता था, तो उसके दवाई का क्या असर पड़ेगा। तो उसे कुछ नियम के साथ नियमों का भी लागू करना चाहिए। तो वह है विरक्तिर। खास करके भक्त लोग वो हमेशा घबरा जाते हैं भक्ति में, सोचते हैं कि अधिक हरे कृष्णा हो गया तो मेरा भौतिक जीवन छूट जाएगा। ये अभक्त लोग जो है उन लोग तो पहली बात तो कि भक्ति में आना ही नहीं चाहते, और जब भक्ति में जब आ जाते हैं तो उनको और डर रहता है कि मैं हरे कृष्णा ज्यादा करूं तो मेरा बाकी अन्य कार्य है टीवी इत्यादि वगैरह इस रोक टोक हो जाएगा, इसलिए ज्यादा सत्संग नहीं सुनने का, केवल थोड़ा सा सुनने का भाग के आने का, क्योंकि ज्यादा सुना तो गड़बड़ है, फिर पता लग जाएगा सही क्या है गलत क्या है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या करो थोड़ा सा सुनो और भाग के आ जाओ। तो वो क्या है, उनके हृदय में एक डर बैठा हुआ है कि भक्ति ज्यादा हुआ तो कहीं मेरा सब कुछ छूट ना जाए, विरक्ति। तो लोग कहते हैं भक्ति उतना ही करना चाहिए, कितना, जैसे खाने में आचार लेते हैं ना थोड़ा सा, वैसे ही भक्ति करना है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि आत्म उन्नति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो त्यजत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलं त्यजत ग्रामम जनकदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजत त्यजत एकम कुलस्य अर्थे। अगर कुल में एक सदस्य उस कुल को अगर दूषित कर रहा है, उस कुल के नाम को खराब कर रहा है, तो कुल का कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति को त्याग दे। त्यजत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलं त्यजत। अगर एक गांव में एक कुल जो बसा हुआ है वो कुल पूरे गांव को दूषित कर रहा है, तो गांव का कर्तव्य बनता है कि वो उस कुल को त्याग दे। ग्रामम सदस्य अर्थे। और अगर एक बड़े शहर में अगर एक छोटे छोटे गांव है, उस छोटे छोटे गांव में एक गांव अगर वो बाकी लोगों को दूषित कर रहा है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उस गांव को ही त्याग दे। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। और आत्म उन्नति के लिए अगर कुछ रुकावट होता है तो चाणक्य पंडित कहते पूरा पृथ्वी त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये अपने जमाने में बहुत बड़े शूरवीर हुआ करते थे। इनके जमाने में ये अपने आप को बड़ा बलशाली समझता था। अचानक इनके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात थी कि ये भारत में युद्ध करते हुए जब पहुंचे भारत में, तो उस समय वो बड़े आराम से बैठा था और उसके पैरों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। तब उसी से मिलने के लिए एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण आकर पूछने लगा अलेक्जेंडर को कि आप इतना भरपूर प्रयास क्यों कर रहे हो, इतना मेहनत क्या कर रहे हो, मारा मारी इतना क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने कहा मैं पूरे राज्य को जीतना चाहता हूं, पूरे पृथ्वी का राजा बनना चाहता हूं। तो इन्होंने पूछा अच्छा पृथ्वी का राजा बनकर फिर क्या करोगे। फिर मैं राज्य करूंगा। अच्छा फिर क्या करोगे। फिर मैं आराम करूंगा। अगर आराम ही करना है तो आपके पैरों में जो कुत्ता से हो आप इसे आराम कर रहा है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य वही है, तो कुत्ता बढ़िया कर रहा बिना मेहनत का। और उस ब्राह्मण से ऐसा प्रवचन सुना कि उनके दिमाग के सारे खिड़की दरवाजा खुल गए। दूसरे दिन उन्होंने तय किया, अपने सारे सेनापति को कहा कि मृत्यु के समय पर मेरे साथ तीन चीज करना। बोला क्या। पहला, जब मेरे कब्र को लेकर जाएंगे तो मेरे कब्र के दोनों बाजू दोनों छेद रखना ताकि मैं दोनों हाथ को बाहर निकालूं। दूसरा ये कि मेरे कब्र को उठाने वाले बड़े बड़े वैद्य होने चाहिए। अच्छा तीसरा ये कि मेरे कब्र को जिस स्थान पर लेकर जाते उसी स्थान के रास्ते में सोने की सर्पिया फेंकनी चाहिए। तो ये सेनापति को तो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूछा इसका तात्पर्य क्या है ये तो बताइए। तो इन्होंने कहा अर्थात ये कि पहला जो मेरे कब्र के में दो छेद बनाने का ये इसलिए क्योंकि मैं पूरे जगत को दिखाना चाहता हूं कि देखो मैंने भरपूर मेहनत किया लेकिन खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा हूं। और दूसरा भले ही मैं कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब मृत्यु आती है तो बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर भी केवल कंधा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल उन लोग इतना ही कह सकते हैं ना, राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, ये तीसरा ये बताना चाहता हूं कि मैंने इतना प्रयास करकर इतना प्रॉपर्टी इतना सारी संपत्ति को कमाया, लेकिन रस्ते में फेंकने के अलावा और कुछ काम का नहीं है। ऐसे भरत महाराज श्रीमद् भागवतम में जहां पर वर्णन आता है, जब उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं राज्य को त्याग दूं, पूरे विश्व के सम्राट राजा भरत महाराज केवल मलवत त्याग कर चले जाते, वैसे उन्होंने पूरे राज्य सिंहासन को त्याग कर जंगल चले गए। तो विरक्तिर, तो विरक्तिर यानी कि क्या, हृदय में भगवान के प्रति जो कुछ भक्ति व रुकावट आता है उस वस्तु को परित्याग करना। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। चौथा है मान शून्यता। मान शून्यता अर्थात हमारे हृदय में जो भी अहंकार जो बसा हुआ है, ऋषि गौर निताई की, हमारे हृदय में जो भी अहंकार है इस अहंकार का ध्वंस करना, हृदय में विनम्रता की भावनाओं को प्रकट करना, ये एक भक्ति का मुख्य अंग है। प्रहलाद महाराज को जब नारद मुनि जब स्तुति गा रहे थे, वो बता रहे थे कि हे प्रहलाद तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम इतने बड़े भक्त हो कि तुम्हारे लिए स्वयं भगवान नरसिम्हा प्रकट होके आए, वाकई तुम महान हो। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे नहीं नहीं, भगवान नरसिम्हा मेरे लिए नहीं आए हैं, भगवान नरसिम्हा का प्राकट्य हुआ है तो चार कुमार के लिए हुआ है, क्योंकि जब चार कुमार ने जय विजय को श्राप दिया कि सुर बन जाओ, तो भगवान ने उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान यहां पर अवतरित हुए। भगवान नरसिम्हा मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, मेरे पिताजी के लिए हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी ने इतने वर्ष तक तपस्या किया, अंगूठे में खड़े रहकर दोनों भुजाओं को आकाश की तरफ अपने दृष्टि को अंबर की ओर देखते हुए इतनी भयंकर तपस्या करने का मुख्य सार यही था कि वो भगवान को एक विचित्र रूप में देखना चाहते थे। तो भगवान प्रकट हुए, फिर कहते हैं वास्तविक भगवान मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी के लिए हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वर दिया था कि तुम्हें तुम्हारा जो इच्छा है पूरा होगा, और ब्रह्मा जी के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान ऐसे नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। फिर अंत में कहते हैं प्रहलाद महाराज, हे नारद ऋषिवर, भगवान मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, भगवान तो आपके लिए प्रकट हुए हैं। बोले ऐसे कैसे, क्योंकि जब मैं अपने मां के गर्भ में था, जब मेरी माता को बलपूर्वक इंद्र जब लेकर भाग रहे थे मेरी हत्या के लिए, उसी समय आप मिल गए और आपने ये कहा कि इनके गर्भ में महाभागवत जन्म ले रहा है जिनके लिए भगवान प्रकट होंगे, तो आपकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, इतने उनके हृदय में विनम्रता थी। तो विनम्रता जो है यह ऐसा गुण है कि भगवान को भी बांध देता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतापपुत्र महाराज से मिलने के लिए नकार दिया कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, मैं एक सन्यासी हूं, एक विषयी राजा जो कि जिनका लेन देन धन संपत्ति से है, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन जब वही प्रतापपुत्र महाराज जब उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू ले लिया और सड़कों में झाड़ू मारने लगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया। तो ये वास्तविकता विनम्रता में ऐसी शक्ति है कि वो स्वयं भगवान को भी अपने हृदय में बांध सकता है। सार्वभौमा प्रभु बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि ये विनम्रता ऐसा गुण है जो कोई भक्त इसको अपने जीवन में लागू करता है, बड़े आसानी से वो भवसागर को पार कर देता है। तो बताते हैं कि जब मुझे पाश्चात्य देश जाना था तो पाश्चात्य देश में जाकर प्रवेश करना था तो उसके लिए मेरे प्रति बहुत कार्रवाई हुई, कौन हो क्या हो, वीजा बनाना था, पासपोर्ट इत्यादि सब बनाते बनाते इतने सारे पूछताछ हुए, बहुत सारे झमेले को झेलते हुए जब मैं पाश्चात्य देश में गया, विदेश जा गया और वहां पर जाकर अन्य भक्तों के लिए अपना पेटी खोला प्रसाद बांटने के लिए, तो जैसे ही पेटी खोल के प्रसाद का डब्बा खोला तो उसमें बहुत सारी चींटी भी थी। तो कहने लगा, अरे ये सारी चींटी तो भारत की चींटी है, भारत से मैं भी आया, चींटी भी आया, लेकिन मैं जब आया तो मेरे पीछे इतने सारे कार्रवाई और ये चींटी आया इसके पीछे कुछ कार्रवाई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि चींटी जो था छोटा था, केवल छोटा होने के कारण चींटी ने बड़े समुन्दर को पार करके चले गया। और सार्वभौमा प्रभु कहने लगे, मैं इतना बड़ा तो मेरे पे बड़ी कार्रवाई चलने लगी, और यहां पर ये चींटी अरे अकेले नहीं, पूरा जॉइंट फैमिली के साथ आया, कोई टेंशन नहीं। तो जब व्यक्ति अपने आप को भक्ति में जब छोटा बना देता है, वो व्यक्ति बड़े आसानी से इस भवसागर को पार कर सकता है। इसीलिए उसे ये ऐसी एक गुण है, मान शून्यता, इसे व्यक्ति को जीवन में लागू करना चाहिए। रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब शत्रुगण को, जब भरत महाराज जब कैकेयी की ओर जब लेकर जा रहे थे तब बताते हैं, गच्छतम मातुलम कुलम भात्रेण तदानग शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न वित्त प्रीति पुरस्कृत। तो बताते हैं शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न, एक जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उनका अहंकार। अब यहां पर भरत महाराज शत्रुघ्न को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा उनको पकड़ कर रथ में बिठा दिया, जैसे वो बताते वित्त प्रीति पुरस्कृत, प्रीति पुरस्कृत, जैसे एक प्रेमी वस्तु, प्रेमी जो जिस वस्तु के प्रति प्रेम है वैसे वस्तु को उठाकर रथ में रख देते हैं, वैसे उन्होंने शत्रुघ्न को उठा के रख दिया, कुछ बोला नहीं, बिना कुछ परमिशन लिए उनको उठा के बिठा दिया। तो ये है अपने गुरु के प्रति शरणागति। इस प्रकार मान शून्यता एक ऐसे गुण है जिसको व्यक्ति लागू करने से भगवान जल्द से जल्द उसे प्राप्त होते हैं। ऐसे बताया गया है कि ये विनम्रता और भक्ति की प्रगति, इसकी तुलना की गई एक शिष्य और जो होता है ऊपर नीचे, तो आप लोग देखे रहेंगे किसी पार्क में एक जगह का पल्ला भारी रहता तो दूसरा ऊपर चला जाता। तो जितना नम्रता का वजन जितना ज्यादा है, जितना विनम्रता आएगी उतना भक्ति में प्रगति होगा। यह है भक्तों के लिए ये चौथा गुण जो कि मान शून्यता, और पांचवा है आशा बंधम। एक साधक भक्त को हमेशा आशा बनाए रखना चाहिए किसके, भगवान की कृपा की। हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही मेरा कुछ हो सकता है। एक भक्त, एक आचार्य बताते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि भगवान मैं मेरा उद्धार होगा। जब मैं भक्त वत्सल जब सुनता हूं, भगवान के गुणों को जब मैं सुनता हूं कि भगवान भक्त वत्सल है, तो मुझे अपने अंदर कुछ गुण दिखता ही नहीं है। लेकिन जब यह सुनता हूं कि भगवान पतित पावन है, तब ऐसे लगता है कुछ होप है, कुछ आशा है। तो भगवान के अंदर यह भी एक गुण है, पतित पावन। तो जब हम दूसरे के अच्छे, कभी कभी दूसरे भक्त लोग को देखते रहिए कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, इनके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, ये जब देखते हैं तो हमें अपने अंदर जो भक्ति का जो उत्साह है वो ढीला हो जाता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। इसलिए कहा गया है टैलेंट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, कैरेक्टर इज अवर चॉइस। जो गुण है, अलग अलग कलाएं हैं, ये भगवान के द्वारा देन है, लेकिन जो स्वभाव है वो हमारा चुनाव है। तो भले ही व्यक्ति के अंदर कितना भी अच्छे तरह तरह का कला क्यों ना हो, लेकिन वो उस कला के प्रति अगर वो गर्वित होता है तो उसके लिए नुकसानदायी है। जैसे नल कुबेर इतने बड़े धनी थे कि उनको अपने धन ऐश्वर्य के प्रति इतना मद चढ़ चुका था कि वो उस धन ऐश्वर्य के मद के नशे में वो महाभागवत के प्रति अपराध कर दिए। तो उसे हमेशा यह सोचना चाहिए जो भी कुछ कलाएं हैं ये भगवान के द्वारा देन है। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा था, उस यज्ञ में सारे बड़े बड़े देवतागण आए थे अलग अलग स्थान से। तब उस समय शिवजी भी आए थे और शिवजी महादेव वहां पर उपस्थित थे, और फिर उसके पश्चात भगवान नारायण अपने गरुड़ में आरूढ़ होके आए। तो यहां पर शिवजी के गले में जो सर्प था वो नारायण के गरुड़ को देखकर हुस हुस कर रहा था, तो बहुत जोर जोर से कर रहा था। गरुड़ को आया गुस्सा, गरुड़ ने कहा एक बार वहां से निकल, मैं तुम्हारा करता हूं फुस फुस। तक वो शिवजी के गले में है तब तक बलशाली है। इसलिए स्थान प्रधान न बल प्रधान, स्थान जो है वो वास्तविकता में बलवान है, ना ही अपना बल प्रधान है। स्थान प्रधान न बल प्रधान, तो हमें यह सोचना चाहिए क्योंकि हम भक्ति में हैं, कृष्ण भावनामृत में हैं, इसलिए बड़े आसानी से सभी प्रकार के संकटों को झेल सकते हैं। अगर भगवान के इस कृपा रूपी धन ऐश्वर्य, ऐसा जो कृपा रूपी ऐश्वर्य को अगर हम भूल जाएंगे, तो जो भी कुछ ऐश्वर्य हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य के प्रति हमारा मत चढ़ जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा इस याचना की, ये याचना करना चाहिए भगवान से कि मुझ पर आप अपनी कृपा को बरसाइए। फिर बताते छठा गुण जो कि समुत्त उत्कंठा, हमेशा उनके अंदर एक लालसा होनी चाहिए, एक उत्साह रहना चाहिए कि मैं भक्ति में अग्रसर हूं, उसे तीव्रता रहनी चाहिए। एक बार एक बालक ने एक पंडित, एक साधु से पूछा कि गुरु प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के विचार होने चाहिए, तो उन्होंने कहा इधर आओ मैं बताता हूं। तो लेकर गए एक सरोवर में, और सरोवर में लेकर गए और उसको कहा डुबकी लगाओ, तो बालक डुबकी लगाया, डुबकी लगाया तो सीधा पकड़ ही लिया और वो छटपटाने लग गया। बस वो अपने प्राण को छोड़ने ही वाला था कि उनको छोड़ दिए, फिर ऊपर आते ही श्वास लेने लगा और वो कहने लगा, मैंने तो आपसे कुछ प्रश्न पूछा था मगर मैं देख रहा हूं कि आप तो स्वयं एक मर्डर करने वाले निकल गए, आप तो मुझे मार ही रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले ये क्या प्रश्न का उत्तर है? बोले जब तुम सरोवर के अंदर डूबे थे तो तुम्हें श्वास के लिए, हवा के लिए तुम कितने बेकरार थे? बोला बस इतना बेकरार था कि एक क्षण भी देरी होता तो मैं अपने प्राण को गवा देता। बोला ठीक उसी प्रकार की उत्कंठा तुम्हें गुरु प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, तब मिल जाएगा। तो यह है वास्तविक भक्ति में उत्साहित होने का। तो सत्संग में आते आते उसके तरह तरह के जो उत्साहित पूर्वक जो शब्द है उसको हमेशा उसे अपने हृदय में धारण करना चाहिए, हमेशा उस पर मनन करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था जो हमेशा सत्संग में आता था, और वो आता था सीधे हमने आकर बैठकर सो जाता था, और ये वक्ता प्रवचन देते थे तो परेशान हो जाता, ये सामने बैठता और सो जाता है, लेकिन क्या करे कुछ बोल भी नहीं सकता माइक में। तो जब भी आता था तो वो बोलता था आ गया क्या, तो बैठता ना बैठ गया क्या और क्या सो गया। फिर प्रवचन चला चला चला, प्रवचन खत्म हुआ तो महाप्रसाद गोविंद हुआ तो आंख खुला, तो जैसे उठा उठ गया क्या, जा रहा है क्या, तो केवल चार ही शब्द सुनता था वो, आ गया है क्या, बैठ गया है क्या, उठ गया है क्या, जा रहा है क्या, वो पूरे प्रवचन में यही चार शब्द सुनता था। एक दिन हुआ ऐसे कि उसके घर पर चोर आ गया, कुछ चोरों का झुंड आक्रमण किए, तो सारे चोर पूरे टीम बनाकर उनके घर पर जाने लगे। उसी समय उनको ये सत्संग का सपना पड़ा, तो कहने लगे आ गया है क्या। तो सब चोर लोग अरे क्या हो रहा है, चुप चुप बैठ 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 गया है क्या। तो किसी ने कहा रहे मुझे लगता है ये सत्संग वगैरह जाता है कुछ सोते सोते सिद्धि प्राप्त कर लिया है, सोते वक्त भी देख सकता है ऐसा है क्या, चलो उठ। तो खड़े हुए, उठ गया है क्या, अरे भागो यहां से, अरे जा रहा है क्या। उसके बाद वो कभी आया ही नहीं। वो और चोरों के भी टीम को जाके बोल दिया कि जाना लेकिन उसके घर पे कभी मत जाना, क्योंकि बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो सत्संग का क्या लाभ है, देखिए केवल सत्संग में बैठ के सोने में भी लाभ है। तो ये भी इसका गलत विचार भी नहीं रखना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा पॉइंट बताया अभी मैं ऐसे ही करूंगा। पूरा प्रवचन में यही पॉइंट बढ़िया लगा। तो वैसे उसे हर क्षण हर पल एकदम उत्साहित पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। सातवां है नाम गाने सदा रुचि। भगवान के यशो गान को गाने के लिए हमेशा उसे तत्पर रहना चाहिए। कृष्णा कृष्णा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में जहां पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते कृष्णा का वास्तविक अर्थ, जब भगवान कृष्ण ने अपने मुख को खोला तो पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने दर्शन कराया यशोदा मैया को। यशोदा मैया देख के दंग रह गई कि ये मैं क्या देख रही हूं, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है इनके मुख में। तब उस समय श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने पूरे संसार को एक छोटे से ढांचे में करके दिखा दिया, पूरे ब्रह्मांड को। आजकल विज्ञान प्रगतिशील माना जाता है, क्यों, क्योंकि सब कुछ कंप्रेस, सब कुछ छोटे वस्तु में डाल देना, बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पेनड्राइव में उतार देना। तो ये कोई अद्भुत बात नहीं है, इससे तो कई अद्भुत है कि पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने कृष्ण ने अपने छोटे से मुख में दिखा दिया यशोदा मैया को। वैसे ही कृष्ण इतने बड़े वैज्ञानिक है, कृष्ण बोलने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप को एक राई के समान छोटा कर देते हैं, और ना बोलने से केवल कृष्ण ना बोलने से उनके सारे पाप क्षय हो जाते। तो वैसे भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, और वो भगवान के नाम को जप करने के लिए थोड़ा भी आलसपन नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी बताते हैं अपने पद में, वे पंते दुरितान मोह महिमा सम्मोह मालम्मते सांतंखम नकरम जनम कलेति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम कसमृधा विदो वेधा करोति उत्यमम वक्तुम नामे प्रवेश्वरा विलसते किम अन्यत्रुम अत्रुमम। तो कहते हैं कि कोई अगर भगवान का नाम जप करने के लिए सोचा है, कोई अगर ये सोच रहा है, अभी भीड़ बैग में हाथ डाला और वो सोच रहा है मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, और ऐसी केवल सोचा उन्होंने, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं मोह महिमा माया देवी कांपने लगती है, ओ ये मेरे मालिक का नाम जप कर रहा है, इसके पास कैसे जा सकती हूं मैं। श्री चित्रगुप्त कृति, चित्रगुप्त के जितने अनुचर हैं, यमराज के जितने भी चेले हैं, यमदूतगण, वो दूर हाथ जोड़ कर खड़े हैं, ये मेरे मालिक का नाम जप करने वाला है। क्योंकि एक बार अनुभव हो चुका है अजामिल के केस में, दोबारा नहीं जाना है, लास्ट वार्निंग मिल चुका है। तब आगे कहते वेधा करो द्युद्यमम। ब्रह्मा जी स्वयं उस व्यक्ति के लिए अपने धाम में उस व्यक्ति के लिए वो आसन तैयार कर रहे, पूजा थाली तैयार कर रहे, अगरबत्ती धूप चामर और मोरपंख तरह तरह के पूजा थाली से वो सजा रहे ताकि उस व्यक्ति का मैं पूजा करूं, ताकि वो भगवत धाम जाने के पहले मैं उसका पूजा का लाभ ले सकूं। ये तो केवल उस व्यक्ति के लिए है जिन्होंने अभी तक जप नहीं किया, केवल विचार किया। तो सोचिए, रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो रोज जप करता है, जो भगवान का नाम जप करता है, उसको उसकी महिमा लिखने, उसके फल को लिखने के लिए मेरे पास कलम नहीं है। तो ये भगवान के नामों की शक्ति है। इसलिए साधक भक्त को इस नाम जप करने में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। लेकिन वो अपने उत्साह को खो देता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि नाम चिंतामणि कृष्ण रस विग्रह, ये चिंतामणि नाम है। वो भगवान के नामों के महिमा को भूल जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी कांग्रीगेशनल को कह दिया कि आप मीरा रोड स्टेशन से एक बड़ा पेटी लेकर आओ, काफी जूना पेटी है, उसे लेकर आओ उठा के। तो बोले नहीं, मैं अकेला नहीं हो सकता है, और वैसे भी मुझे कमर दर्द बहुत है, मैं उठा नहीं सकता हूं। लेकिन कह दिया जाए कि उसी जूने पेटी के अंदर सोने का बिस्किट भी है, वो तुम लेकर जाना। तो कितना भी बैकपेड होगा, कितना भी कमर दर्द होगा, बोले मैं अकेला उठाएगा, कोई नहीं चाहिए। तब किसी चीज किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, कितना भी दर्द हो। तो वैसे ही भगवान के नामों में ऐसी शक्ति है जिसको व्यक्ति जप करने के लिए उसे यह सोचना चाहिए कि यह कोई साधारण नाम नहीं है। गोलोकेना प्रेमधना हरि नाम संकीर्तन, वैसे प्रेम धन जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ला कर दिया है। तो वह इस प्रकार ये सातवां गुण और आठवां, एक साधक भक्त को हमेशा भगवान के नामों के प्रचार में लगना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। भगवान के नामों का प्रचार प्रसार का हर दिन उसे कोई ना कोई किसी किसी व्यक्ति को मिलकर, उसे एक नए व्यक्ति को उसे मिलकर समझाना चाहिए कि भक्ति क्या है और भक्ति क्यों करना चाहिए। तो भगवान के नामों का प्रचार करना ये उनके एक भक्ति का एक अंग है। रूप गोस्वामी बताते हैं, और ये ऐसा अंग है कि आप जब कहोगे तो आपके भक्ति में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि जब हम दूसरे को कहते हैं तो कहने के समय पर सुनने वाला व्यक्ति कौन होता है? सबसे निकट में कान किसका है? बोलने वाले व्यक्ति का ही निकट में कान है, तो जब बोल रहा है तो खुद ही सुनेगा। तो जब प्रचार करता है तो प्रचार किसी और को नहीं, स्वयं को ही करता है। इसलिए सरस्वती ठाकुर कहते कि कोई नहीं मिला तो दीवालों को देखकर प्रचार करो। ये जरूरी है ये अंग। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हमारा क्या गुरु होए सारे यही देश। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें लाइसेंस मिल चुका है। कोई कहेगा तुम कहां से ये सब बोल रहे हो, किसकी आज्ञा से बोल रहे हो? महाप्रभु ने दिया है, महाप्रभु ने सबको लाइसेंस दिया है। कि सभी गुरु बन सकते हैं और लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो वैसे प्रचार में ऐसी शक्ति है कि उसके जीवन सुधर जाता है। कमलोचन प्रभु के जो शिक्षा गुरु है आत्म तत्व प्रभु, जब आए थे इधर तो हम उनसे कुछ उनके जीवन के अनुभव के विषय में पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत ही सुंदर किस्सा बताया जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो बता रहे थे कि पहले मैं भी घर बार सब छोड़कर वो आ गया इस्कॉन में, और इस्कॉन में आकर ज्वाइंट हो गए धोती कुर्ता, अब न्यू भक्त में थे, धोती कुर्ता वगैरह पहने हुए थे, तिलक वगैरह सब था। और हुआ क्या कि वो बस पार्टी में थे और बस पार्टी में उनका अन्य भक्तों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और खूब इतना इतने जो धुआधार उसमें आर्ग्यूमेंट हुआ कि लास्ट में उन्होंने कहा मैं सब छोड़ जा रहा हूं। तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए थे और परेशान होकर बस से उतर गए, बोला तुम लोग जाओ मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने देखा मैं अपने घर बार भी छोड़ दिया, इधर भी आ गया, इधर भी ऐसे परेशान हो गया, बस एक ही रास्ता है आत्महत्या सुसाइड। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि बड़ा एक ब्रिज के पास जाकर सुसाइड करूंगा। तो एक बड़ा ब्रिज के ऊपर जाके गया, अब उस ब्रिज से कूदना था लेकिन लोग आ रहे थे, तो सोचा रुको ठहरू लोग जब जाएंगे तभी। तो जब कोई नहीं था तो जब ये कूदने ही जा रहा था तो एक व्यक्ति तीन बच्चे को दौड़ते हुए उनके पास आने लगा। तो बोला अरे अभी नहीं कूद सकता हूं क्योंकि अगर ये लोग देख लिया तो कैसे भी बचा देंगे, इसलिए कूदना अभी ठीक नहीं है। तो रुक गए। तो ये आए, ये अपने तीन बच्चे आए, बेचारा आदमी बड़ी गरीब परिस्थिति में था, तो कहने लगा संत जी साधु जी, अब उनका तो वेशभूषा वही था, तो उनके हाथ जोड़कर उनका चरण वगैरह स्पर्श किया और कहने लगा मेरे मन में एक बहुत बड़ी एक शंका खा रही है। बोला क्या, मैं अपने घर बार से बहुत परेशान हो चुका हूं, अपनी बीवी से काफी परेशान हो गया हूं, मुझे केवल एक ही रास्ता दिखता है आत्महत्या। अब आत्मतत्व प्रभु सोच रहे अरे मैं तो यही करने जा रहा था। फिर बोले आत्महत्या कभी नहीं, आत्महत्या बुरी बला है, आत्महत्या करोगे तो तुम बनकर भटकते रहोगे, कभी शरीर नहीं मिलेगा, भूत बन जाओगे, कभी आत्महत्या करने के लिए सोचना भी मत। तो हाथ जोड़कर उसको इतना प्रवचन दिया, वो हाथ जोड़कर बेचारा चला गया। फिर आत्मतत्व प्रभु सोचने लगे वो माना क्या नहीं माना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कन्विंस हो गया कि मुझे नहीं कर रहा आत्महत्या। तो जब हम दूसरे को जब समझाते हैं तो खुद पर ही असर पड़ता है, और वो ऐसी दिव्य ध्वनि है, ये भगवान के गुणावली ऐसी दिव्य ध्वनि है कि बोलने वाले का पहला चित्त शुद्ध करता है। इसलिए उसे ये जो आठवां गुण है जो कि लोगों को प्रचार करना, ये लगाना चाहिए। और अंत में नौवा और वो है तत् विशिष्ट तले, तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करना चाहिए, उसे वर्ष में एक बार भक्तों के मंडली में जाकर तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना चाहिए। जिस तीर्थ स्थान पर भ्रमण करने से उनकी भक्ति में एक उत्साह आता है, क्योंकि तीर्थ स्थानों के यहाँ के जो मिट्टी है वो इतनी बलशाली है कि हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति को जगाता है। धृतराष्ट्र के मन में क्यों डर था कि मेरा पुत्र दुर्योधन कहीं भक्त ना बन जाए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं भूमि का असर ना पड़ जाए, क्योंकि वो कौन सा क्षेत्र था, धर्म क्षेत्र, तो वो धर्म की भूमि होने के कारण कहीं मेरा अधर्म पुत्र धार्मिक ना बन जाए, इसलिए पूछा कि मम कुरुवत संजया। तो धर्म की भूमि यानी कि जो श्रीधाम जो भगवान के जो दिव्य धाम है, उस धाम में जब हम जाते हैं तो वहां की तरंगे ऐसी तरंगे है कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का नाम जप करने की रुचि बढ़ जाती है। लेकिन वैसे यहीं पर ही आएंगे मुंबई में, जो वहां पर 64 माला करते थे वो यहां पर एक माला भी करना भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहां की तरंगे ऐसी तरंगे है, एक सूक्ष्म तरंगे है जो हमारे मन बुद्धि को निरंतर आक्रमण करती रहती है, जिससे व्यक्ति को भगवान के नाम जप में या भगवान की भक्ति में उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए उसे तीर्थ स्थानों का भ्रमण जरूरी है एक साधक भक्त के लिए। तो ऐसे जब हम पूरे 9 प्रकार के गुणों को जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तब स्वाभाविक रूप से हम भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच सकते। फिर आंसू गिरेगा, कैसा आंसू गिरेगा? नयनम गल अश्रुधार या वदनम गदगद रुदिया गिरा, तब वो आंसू उसके आंखों से गिरेगा, भगवान के एक नाम जप करने मात्र से प्रेम पूर्वक आंसू गिरेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई और कुछ प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते। प्रश्न है आपका? अच्छा, अनुम सुन ठीक है। हाँ पूछिए। हाँ तो प्रभु जी का प्रश्न है कि यम और नियम के विषय में कुछ छोटा सा झलक हो जाए। यम यानी कि कुछ करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें 5 चीज जो कि करने के लिए कहा गया, 4 चीज जो कि नहीं करने को कहा गया है। यम करना, नियम नहीं करना। तो क्या 4-5 चीज करना है? तो कहते हैं सबसे पहला साधु संघ, साधु संघ करना है। उसे समय समय निकाल कर अपने इस्कॉन से केंद्र में आकर उसे साधुओं की संगति का लाभ उठाना है। भागवत पाठ करना, श्रीमद् भागवत गीता भागवतम का रोजाना उसे अपना समय देना है, उसमें पाठ पठन में, पठन पाठन में। तीसरा है भगवान का नाम जप करना, संकीर्तन करना। और चौथा है विग्रह की सेवा करना। और पांचवा है धाम निवास करना। ये 5 वस्तु उसे करना है, और 4 वस्तु जो कि नहीं करना है, मांसाहार नहीं खाना है, कांदा लहसुन भी आ जाता है, नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है। प्राय जो 4 नियम हम भगवद गीता कोर्स के अंतिम दिवस में बताते हैं जो नहीं करना है, 7 दिन तक पूरा फुल रहता है। 7वें दिन हम ये कहते हैं मांसाहार नहीं खाना है, 30% गायब। जुआ नहीं खेलना है, और 30% गायब। नशा नहीं करना है, और 30% गायब। ब्याह विचार नहीं करना है, बच्चे कुछ भी गायब। जो बसते हो डायमंड है, जो बच जाते हैं वो रत्न के समान है। इसलिए ये जो 4 नियमों को जो पालता है, वास्तविकता में बहुत ही अपने हृदय में एक सच्चा भक्ति को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा करता है। क्योंकि लोगों का विकेट वहीं पर ही निकल जाता है जब व्यक्ति को ये कहते हैं कि चाय पीना नहीं, नशा में चाय भी आता है, तो सुनते ही लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि चाय नहीं पीना, चाय में क्या बुरा है। सार्वभौम प्रभु इसके ऊपर बहुत अच्छा बात बताते हैं। वो बताते हैं कि ओम जय चाय की प्याली सुस्त जनों को चुस्त कर दे, ओम जय चाय की प्याली। जो सुस्त लोग हैं उसको चुस्त कर देता है वो, क्या है ओम जय चाय की प्याली। तो हमारा ये कहना है कि हम कभी सुस्त होते ही नहीं है, तो चुस्त होने का सवाल ही नहीं उठता है, हम चुस्त रहते हैं। बिस्तर से उठे जरूर मिले, बिस्तर से उठे जरूर मिले, फिर दंतन फिर मंजन, ओम जय चाय की प्याली। तो पहले ही बिस्तर से उठ को एक चाय पिए, बैड टी, बैड टी रे, बैड टी, ओम जय चाय की प्याली। अतिथि आए जरूर मिले, अतिथि आए जरूर मिले, ओम जय चाय की प्याली। अगर अतिथि आया आप उनको खूब खिलाओ पिलाओ, खूब अच्छी तरह रसगुल्ला समोसा सब खिलाओ, चाय नहीं देंगे तो बाहर जाती, अरे चाय तक नहीं पिलाया। जिस देश में दूध की गंगा बहती थी, जिस देश में दूध की गंगा बहती थी उसमें पड़ गई काली पत्ती, ओम जय चाय की प्याली। तो ये ऐसा नशा है कि व्यक्ति को भक्ति से दूर लेकर जाता है, इसलिए ये नियम व्यक्ति को पालना है, इस चीज से दूर रहना है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की कुछ अनाउंसमेंट है,
कृपया जी ने इतना अच्छे ढंग से प्रवचन सुनाया, हम लोगों को समझ कराया, इसमें भक्ति के नौ अंग या भक्त के नौ गुण का उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। इसमें वैसे सभी नौ के नौ गुण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नम्रता, नम्रता एक ऐसा गुण है कि बिना नम्रता के भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है, और नम्रता के साथ साथ अहंकार, उन्होंने बताया कि अहंकार छोड़ना पड़ेगा। नम्रता और अहंकार दोनों में विरोधाभास है, अगर नम्रता है तो अहंकार नहीं रहेगा, और अगर आपके अंदर अहंकार है, हमारे अंदर अहंकार है, तो नम्रता आना बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति के में, भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे जरूरी है हमें अहंकार छोड़ना और नम्र होना। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु जी ने प्रवचन सुनाया, इसके लिए हम सभी प्रभु जी के बहुत ही आभारी हैं, और प्रभु जी का आभार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से, महामंत्र का उच्चारण पूर्ण उच्च स्वर में करेंगे और उनका स्वागत करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। धन्यवाद प्रभु जी। अभी कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ घोषणाएं हैं, आप लोग क्रमशः सुनिए। सब सर्वप्रथम आने वाले मंगलवार 22 तारीख को, 22 जनवरी को एकादशी है, एकादशी का हम लोग सब जैसे महीने का व्रत पालन करते हैं वैसे व्रत पालन करेंगे, जो सोलह माला करते हैं उससे अधिक करेंगे, जो 25 करते हैं उससे अधिक करेंगे। और अगले संडे को, अगले रविवार को श्याम गोविंद प्रभु जी के काउंसिल द्वारा कीर्तन की सेवा, जो दोपहर के फीस की कीर्तन सेवा रहती है, वो श्याम गोविंद प्रभु जी के काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा होगी। तो कृपया आप लोग जो श्याम गोविंद प्रभु के काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो कृपया नोट कर लीजिए, याद रखिए कि अगले संडे को आप लोगों को सुबह 10 बजे तक जरूर पहुंचना है कीर्तन सेवा में। तत्पश्चात अगले 26 जनवरी को, अगले शनिवार को, जैसा आप लोगों को मालूम है कि हर साल रथ यात्रा थाना में, थाना के जो भक्त लोग हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, थाना में रथ यात्रा होती है, तो अगले और उस दिन छुट्टी भी है, वैसे हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, तो उस दिन आप लोगों को, सब लोगों को रथ यात्रा में शामिल होना है। यहाँ से 1 बजे बस सर्विस है, फ्री बस सर्विस है, आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। रथ यात्रा में भारी से भारी संख्या में आइए और रथ यात्रा को सफल बनाइए। तत्पश्चात आप लोग कृपया 2 मिनट और बैठिए, कुछ और अनाउंसमेंट है। तत्पश्चात संडे को 27 जनवरी को बिहार में, बिहार पश्चिम में न्यू विवाह कॉलेज में रथ यात्रा है, जो 2:30 बजे दोपहर को स्टार्ट होगी, वहाँ से प्रारंभ होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वहाँ भी, बिहार में भी, बिहार पश्चिम में भी आप लोग रथ यात्रा में भाग लीजिए, और रथ यात्रा में भाग लेकर के जगन्नाथ भगवान की कृपा से कृपा पाएंगे। उसके पश्चात वनमानी प्रभु जी, आप लोगों को मालूम होगा हमारे मंदिर के वरिष्ठ भक्त हैं विशेष वनमानी प्रभु जी, फर्स्ट टाइम पहली बार वो भगवत कथा सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं विराज पूर्व में जो ब्रज सुंदर मंदिर, विराज ईस्ट में विराजपुर में जो ब्रज सुंदर मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पर मनवाली प्रभु जी, मनवाली प्रभु जी तो हमेशा प्रवचन करते हैं आपको अभी तरह मालूम है, लेकिन फर्स्ट टाइम भगवत कथा भगवत श्रीमद भागवत कथा के ऊपर भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है मंदिर की तरफ से और प्रवचन करता होंगे मनवाली प्रभु जी। तो आप लोगों से निवेदन है कि उस कथा में आप लोग आइए 28 तारीख सोमवार से 3 फरवरी संजय तक, ये कथा शाम को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगी। आप लोग सभी लोग आइए, सभी के लिए प्रसाद भी रहेगा। और इसके पश्चात अभी प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी ने कि जो रथ यात्रा यहाँ पे थाना की रथ यात्रा है 4 बसें हैं, एक बजे पहली बस जाएगी, तब पश्चात जैसे जैसे भक्त लोग आते जाएंगे वैसे वैसे बस छोड़ते जाएंगे, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक सभी बसें यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर भारी भारी संख्या में आप लोग रथ यात्रा में भाग लीजिए, 26 जनवरी की और 27 जनवरी की दोनों रथ यात्रा में आप लोग भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसाद।